नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही घोषणा की कि वह कुछ ऐसा करने की योजना बना रहे हैं जिससे बहुत से लोगों को मदद मिले। 11 जनवरी 1992 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले गांगुली ने इस साल नई पारी शुरू करने का फैसला किया, जो उनकी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत के बाद से उनकी 30वीं पारी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष गांगुली ने ट्विटर पर एक नोट साझा किया, जहां उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय में प्रशंसकों से समर्थन मांगा। हालांकि उन्होंने अपने नए उद्यम के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया। उन्होंने लिखा, साल 2022 1992 में क्रिकेट के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत के बाद से 30वां वर्ष है। तब से क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे आप सभी का समर्थन दिया है। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहा है, जिसने मेरा समर्थन किया और मुझे आज जहां मैं हूं वहां पहुंचने में मदद की। आज मैं कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा हूं जो मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों की मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन के इस अध्याय में प्रवेश करने पर आप अपना समर्थन जारी रखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी एक्शन ड्रामा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की टीम बृहस्पतिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करेगी। फिल्म के निर्माताओं ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी मुख्यमंत्री के लिए आयोजित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म महान सम्राट एवं योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि मानुषी छिल्लर राजकुमारी संयोगिता के किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अक्षय ने कहा कि ये फिल्म अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और साहस पर आधारित है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। युवा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को एशिया कप में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीतने के लिए उत्साही प्रदर्शन किया। मंगलवार को दक्षिण कोरिया के साथ रोमांचक 4-4 से ड्रॉ के बाद गोल अंतर पर खिताबी संघर्ष में एक स्थान से चूकने के बाद गत चैंपियन भारत उद्देश्य के साथ बाहर आया और 7वें मिनट में राजकुमार पाल के माध्यम से एक फील्ड गोल किया। भारत ने मैच के पहले 5 मिनट में तेज शुरुआत की और जोर से धक्का दिया, लेकिन विपक्षी भी दमदार प्रदर्शन करते रहे और भारत के सभी प्लान्स को विफल करते रहे। हालांकि भारतीयों ने 7वें मिनट में तेज जवाबी हमले से गतिरोध को तोड़ा, जिसमें उत्तम सिंह ने राजकुमार पाल के लिए इसे स्थापित करने के लिए पूरी मेहनत की, जिन्होंने इसे बड़े करीने से जापानी गोलकीपर ताकाशी योशिकावा को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट बाद भारतीयों ने 2 बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन दोनों में पॉइंट्स अर्जित नहीं कर सके। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के एक समूह ने घाटी में गैर मुस्लिम कर्मचारियों के आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्या के खिलाफ बुधवार को सामूहिक पलायन की तैयारी शुरू कर दी। इन्हें समुदाय के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत नौकरियां दी गई हैं। समूह ने कहा कि वे बुधवार को ट्रक मालिकों से मिल रहे हैं, जहां वे उनके सामान को ले जाने के भाड़े पर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा एक शिक्षिका को गोली मार कर हत्या करने के कुछ घंटे बाद कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के एक संगठन ने धमकी दी थी कि अगर 24 घंटे में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो वे घाटी छोड़ देंगे। यहां उनके एक प्रतिनिधि ने कहा, हम ट्रक मालिकों से भाड़ा तय करने के लिए आए हैं, देखते हैं आज शाम तक सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं, अगर नहीं तो फिर हम कल से यहां से पलायन शुरू कर देंगे। एक कर्मचारी ने कहा, अगर सरकार 24 घंटे में हमारी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो एक बार फिर सामूहिक पलायन होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्या जारी है और समुदाय अब सरकार से अपील करते करते थक गया है। उन्होंने कहा, हमें स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि हमें बचाया जा सके। हमारा प्रतिनिधिमंडल पहले उपराज्यपाल से मिला था और हमने उनसे हमारी सुरक्षा के लिए कहा था। हम घाटी में स्थिति सामान्य होने तक 2-3 साल के लिए अस्थायी तौर पर स्थान परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने को लेकर बुधवार को केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। पायलट ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार द्वेष और नफरत की राजनीति कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को ईडी का समन भेजकर भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। पायलट ने ट्विटर पर लिखा, परंतु इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी सोच के समक्ष न झुकी है और न कभी झुकेगी। उल्लेखनीय है कि निदेशालय ने समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को समन जारी किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।